ಶ್ಲಾಘಯ ಚಕ್ಷುರುಣುಮಿಲಿತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ. ಮಹಾಬದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರಪಿಷೇ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರಯಾ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತರಿದಯಂ ಮುನಿಮಾನುತಃ. ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜಿವಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧೇ ತ್ವಂ ನ ಮಾಂ ಚರಣಂತಿಕೆ. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬೋಲು. ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ. आज एकादशी का दिन है. आज हम लोग एकादशी का व्रत किए हुए हैं. भारत में अधिकांश लोग एकादशी का व्रत करते हैं, चाहे और कोई व्रत करे चाहे ना करे, किंतु एकादशी का व्रत, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे अद्वैतवादी हो, चाहे रामानुजी हो, मध्वाचार्य का हो, कोई किसी संप्रदाय में नहीं रहे तब भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी लोग इस व्रत को करते हैं. कोई भले ही कोई एक कोई व्रत न करे, किंतु आज की ये जो एकादशी है जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, एक एकादशी करने से सब एकादशी भी हो जाएगी, सब व्रत भी करने हो जाएंगे. सोम मंगल कितने बहुत से लोग करते हैं, सारे एक एकादशी के करने में ही हो जाते हैं. क्यों ऐसा है? और एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? उससे कुछ लाभ है या हानि है? भूख लगती है, आदमी दुर्बल हो जाता है, आदमी काम नहीं कर सकता. आप लोगों की बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं, किंतु ये गलत धारणा है. एकादशी नाम ही क्यों पड़ा? जो जिस दिन को पढ़ते हैं वही नाम रख देते, सोम मंगल बुधवार. हमारे लिए इस जीवन में, शरीर में 11 अंग होते हैं जिसके सहारे हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं. मान ले के मन में सोचा, किंतु यदि काम शरीर से नहीं किया, हाथ से नहीं किया, हमको जाना है यहाँ से दो घर उधर में, या बैंक में जाना है, तो यहाँ से उतरना होगा पैर से. तो पैर के बिना कोई काम कर सकते हैं? नहीं. अरे रसोई बनाना है, रसोई हो गई है, कहीं होटल में गए, खाना है तो हाथ से उठाना तो होगा. हाथ से नहीं उठाएंगे तो कैसे? हाथ नहीं उठाएगा तो क्या होगा? मुख से, हाथ से उठा दिया, चिबाना तो मुख को पड़ेगा ना, जीवा तो काम करेगी. अच्छा, आदमी हाथ पैर से चलता है या मन से चलता है? पैर से चलता है या मन से चलता है? कैसे? पैर से ना. मन यदि नहीं, कोई पागल हो रहा आदमी तो गिर जाएगा. पैर रहे और मन ना रहे तो क्या होगा? कुछ देर चलने के बाद में वो गड्ढा नहीं देखेगा, कुछ नहीं देखेगा, गिर जाएगा, मरेगा. इसलिए सब काम मन से होता है. और मन नहीं रहेगा तो पैर काम नहीं करेगा, आंख नहीं काम करेगी. एक आदमी, कोई एक महिला है या कोई पुरुष है, उसका कोई आदमी मर गया, बहुत चिंतित है, बैठा हुआ है या बैठी हुई है, चिंता कर रही है. और यहाँ से एक बाजा बजता हुआ चला गया शादी होने के लिए. तो कोई पूछता है, जैसे तुमने देखा अभी बहुत से लोग गए बाजा बजाते हो? तो नहीं, हमने तो नहीं सुना. मन कहाँ था? इसलिए वहाँ पर कान रहने पर भी काम नहीं कर सका, आँख थी आँख से नहीं देख सकी, इसलिए सबका राजा मन है। और इसके बाद में पांच उसके मुख्य सहायक हैं जिसे वो ज्ञान लेता है और सुख दुख की अनुभूति करता है। वो क्या है? चक्षु, आँखें, चक्षु, कर्ण, ये दोनों काम, नासिका, जिह्वा। यदि न रहे जिह्वा और रसास्वादन नहीं होगा, उसे रस नहीं आएगा, हजम नहीं होगा, और उसे ये कड़वा है कैसा है ये सब जिह्वा से मालूम होता है। तो ये पांच सेंस हैं जिसे हम सर्दी, गर्मी, अच्छा, बुरा, कोमल, कड़ा, ये सब गर्म है कैसा है, ये सब चीज़ें इसी से मालूम होता है, इसी से हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं। ये चीज़ें न रहें, हमारा हाथ, ये त्वचा न रहे तो ये गर्म चीज़ है कि ठंडी चीज़ है, मन करेगा? मन तो कुछ कर नहीं सकता, मन उसके सहारे ज्ञान ले करके तब पर उस पर विचार करके अच्छा है बुरा है इत्यादि सब करता है, किंतु इसकी भी जरूरत है। और पांच कर्म इंद्रिय हैं जिसे कर्म करते हैं हम, हाथ है, पैर है, जीवा है, और जिसे पैखाना होता है और पेशाब होता है। यदि पेशाब का रास्ता बंद हो जाए तो अभी अस्पताल में दौड़ना पड़ेगा, एक मिनट भी बचना भारी मुश्किल हो जाएगा, घर को सिर पर ले लेंगे। और यदि पैखाना बंद हो गया तो अब मरे तब मरे। ये समस्त ये दस इंद्रिया और मन मिला करके ये शरीर का काम सब चलता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस दस इंद्रियों को संयम नहीं करने से गड़बड़ हो जाएगा, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ मरोगे। घी अच्छा लग रहा है उसमें बुरा दे दो मीठा हो जाएगा ना, बुरा बुरा जानता है, जानती है शुगर, बहुत से एक किलो घी में आध किलो मिला दिया बुरा और पूरा खा गए तो क्या होगा? घी खाने से कपड़े गंदे हो जाएंगे, लूज मोशन ऐसा होगा जिसे फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा ना, पिचकारी चलेगी बचना संभव असंभव हो जाएगा, इसी को कहते हैं कॉलरा। इसी तरह से समस्त अपने इंद्रियों पर काबू नहीं करेंगे, हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंद्रियां गड़बड़ कर देंगी, अधिक ले लेंगी। इसीलिए इन सबको संयम करने का लिए ही एकादशी का व्रत, दसों इंद्रियों, एकादशी इंद्रियों पर। और विशेष करके आज के दिन एकादशी माने क्या, आज तिथि भी है, चंद्र के समय से कुछ ऐसी गणनाएं होती हैं जिससे कि हमारे वर्ष इत्यादि की गिनती होती है, उससे ऋतुएं इत्यादि हम सब जानते हैं, शरीर पर उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आज चंद्र में एकादश कलाएं होंगी, दो होता है वर्ष में, एक तो क्षीण होते 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 एकादश की स्थिति में आ जाएगी, अथवा बढ़ते बढ़ते एक एक कला बढ़ते 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 चंद्र 11/15 कलाएं होती है 16, तो 16/16 माने 11वां भाग चंद्र का दिखेगा ना? किसी भी प्रकार से तब एकादशी होती है। इसका प्रभाव क्या होता है, उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा बहुत अधिक ऊंचा उठता है, जरूर उठेगा ही साधारण दिनों की अपेक्षा। यदि साधारण दिन में 1 फुट समुद्र की वो ज्वार भाटा आते हैं तो उस दिन पुरी में हम जाते हैं देखते 10-15 फुट ऊंची उठ जाती है चंद्र के आकर्षण से। जहाँ पानी होगा वहाँ पर चंद्र आकर्षण आज तिथि में करेगा, तो हमारे शरीर में भी पानी है, भोजन जो करते हैं उससे पानी बनता है, फिर पानी बन करके उसका जो स्थूल अंश होता है पैखाने के रास्ते से और गंदा पानी पेशाब के रास्ते से निकल गया और उससे बाकी का बन गया रक्त, रक्त से बना मांस मेद मज्जा, उससे शुक्र और शुक्र से बुद्धि बनती है, मन बनता है। प्याज लहसुन खाया तो आपका मन भी तामसिक प्याज लहसुन जैसा होगा, बकरी और बकरे का मांस खाया तो मांस के समान होगा, आदमी बड़ा कामुक होगा, बदमाश होगा, लोगों को काटेगा पीटेगा। इसलिए आज के दिन चंद्र हमारे शरीर में जो पानी होता है उसको खींचता है। यदि आपने अन्न खाया और उस अन्न जो होता है जैसे गेहूं का कोई बना हुआ चीज, चावल का बना हुआ, ये ब्लॉटिंग पेपर के समान होता है, रुई होती है ना, पत्थर पर पानी छोड़ दो तो पानी जल्दी से सूख जाएगा, और रुई के ऊपर में पानी छोड़ दो तो वो दिन भर नहीं सूखेगी, सूखेगी। इसलिए अन्न जो हम उस दिन खाते हैं उसमें पानी ऐसा होता है जिसको चंद्र खींच करके उसके रोग को बढ़ा देता है। इसलिए आदमी अधिकतर एकादशी से अमावस्या, एकादशी से पूर्णिमा के अंदर में मरते हैं, उनका रोग बढ़ता है, और भी रात के समय में बढ़ेगा जिस समय कि चंद्र उदित होता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ बतलाया गया कि एकादशी के दिन में यदि तुम लोग अन्न नहीं खाएगा तो तुम लोग सुखी शांति रहेगा, शरीर में रोग कम होंगे, आदमी 100 वर्ष तक जिएगा और सुख से जिएगा। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, चंद्र उनका वो सब डिस्टर्ब करके और सब चौपट कर देता है, शरीर स्वस्थ अस्वस्थ हो जाता है, उसमें तरह तरह के रोग होते हैं। उसमें दम्बा है, दम्बा जानते हैं ना, श्वास का, उदरी रोग, भगंदर रोग, यहाँ तक कि टीबी, कैंसर इत्यादि, यदि थोड़ा है तो उसको बढ़ा देगा। इसलिए उस दिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाए, हो सके तो निर्जला, जैसे कि चंद्र का प्रभाव उस पर नहीं पड़े बुरा, और यदि नहीं होता है तो ऐसे चीज़ को खाओ जो सहज ही में वो पानी निकल जाए। वो क्या चीज़ है, फल है, दूध है, फल फ्रूट से बनी हुई चीज़ें हैं, दूध से शरबत या और जो चीज़ें हैं ये सब लिया जाए तो उससे क्या होगा, सहज ही में पानी निकल जाएगा, और नहीं तो ब्लॉटिंग पेपर या रुई की भांति उसको प्रिजर्व करके रखेगा और रोग को बढ़ाएगा ही। हमने अस्पतालों का बहुत सा देखा है, जो आदमी मरते हैं अधिकांश एकादशी में उसी रात को, यदि रात को बच गए तो दिन में किसी प्रकार रहेंगे, नहीं तो फिर रात आने पर बढ़ पूर्णिमा तक डर रहता है। इसलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए स्थूल रूप से, भौतिक रूप से इसकी आवश्यकता है, और पारमार्थिक रूप से क्या है, पारमार्थिक रूप से इन एकादश इंद्रियों को महीने में दो बार कुछ विश्राम देना चाहिए। आप लोग काम करते हैं ऑफिस में, इधर उधर में काम करते हैं, तो गवर्नमेंट छुट्टी आपको ऐसे ही देती है, उसका कितना पैसा मारा जाता है, एक दिन की छुट्टी देने में लाखों लोगों को कितने पैसे उसके नुकसान होते हैं, किंतु नहीं, वो इसलिए जानबूझ करके देती है गवर्नमेंट छुट्टियाँ, ये जो परिश्रम करके क्लांत आदमी हो जाता है तो वो थोड़ा सा विश्राम कर लेगा, उसका मन जरा ठीक हो जाएगा, दूसरे दिन पूरे डबल रूप से काम करेगा, वो दुगना उससे वसूल कर लेगा, और सब समय काम करता रहे तो कुछ दिन के बाद वो काम नहीं करेगा, बीमार हो जाएगा। उसी तरह से अपने अंदर में, शरीर के अंदर में बहुत से कीड़े हैं जो हजम करते हैं, उनके पुष्टि रहने से हम लोग पुष्ट रह सकते हैं, उनके बीमार हो जाने से हम लोग भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए उनको एक दिन विश्राम, अंततः 15 दिन में एक दिन देने की जरूरत है। फूल यदि करो दूसरे दिन तक तुम्हारी एनर्जी शक्ति पूरी होगी, अच्छी रहेगी, और यदि इनको विश्राम नहीं दिया तो 100 वर्ष की आयु आपकी 50 वर्ष की आयु रह जाएगी, वो भी स्वस्थ नहीं रहेगी। किंतु ये सब हमने गौण बतलाए, मूल चीज क्या है, भगवान ने देखा जी हमको छोड़ करके जीव भुला हुआ भटका हुआ संसार में, इस शरीर को ही सर्वस्व मान रखा है। यह शरीर बड़ा सुंदर है तो बहुत सुंदर दिखता है, किंतु कभी कभी हम लोग धोखा खा जाते हैं, गुणों की परख नहीं कर पाते, शरीर में चलते हैं, शरीर वो धोखा दे, सौंदर्य में वशीभूत होकर के मरते हैं हम। तो यदि आत्मा सुंदर है, स्वच्छ है, पवित्र है, उसके गुण हैं, तो आदमी श्रेष्ठ है। हम लोग गांधी जी को बहुत मानते हैं, गांधी जी कैसे खूब सुंदर थे, लठिया लिए हुए बूढ़े से चलते थे, दुबले पतले, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, महात्मा गांधी कहलाते हैं, उनसे जगत में लाखों कोटि बड़े बड़े सुंदर लोग। इसलिए जिसकी आत्मा सुंदर है वो सुंदर है, जिसके गुण सुंदर हैं वो सुंदर है ना। जो खूब सुंदर है, और वो सुंदरता के वजह से लोगों के समाज में बन करके अच्छा, और उनका सब कुछ चोरी कर लेता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, डकैती करता है, तो वो किस काम का है? तो हमारे अंदर में हम भगवान को भूल करके अभी जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। कब से पड़े हैं, इसका कोई था नहीं, अनंत कालों से। और कितने बार हमारा ये पहला मनुष्य जन्म नहीं है, जब से जगत की सृष्टि हुई तब से हमारा ये जन्म, कभी हुआ तो सुकर कुकर, कभी मनुष्य, कभी स्त्री, कभी पुरुष, पुरुष कभी स्त्री, कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी कच्छप, कभी मांस, कभी मछली, कभी कुछ, इस तरह से जन्म होते हैं। तो आज इस स्थिति में हम पहुंचे हैं। हो सकता है कि 10 बार हम, 50 बार, लाखों बार मनुष्य हुए हों, कभी देवता भी हुए हों, कभी हम किसी देश के राष्ट्रपति बने हों, बड़े धनी हो, बिरला और टाटा, और यहाँ पर कौन कंपनी, मोटर वाली फोर्ड कंपनी से हम धनी हों, ऐसा हो सकता है। कभी राजकुमारी हो हुए हों, कभी एलिजाबेथ भी हुए हों हम, कभी डायना, अभी अभी हाल में कोई डायना है, वो भी हुए हों, कितने रंग और कितने हम लोगों ने किए हों, किंतु जन्म मरण का चक्कर से, ये दुखों से, बुढ़ापा से हम नहीं छूटे। इसको छुड़ाने के लिए भगवान ने कहा, अच्छा भाई मैं एकादशी का रूप धारण करता हूँ, और यदि कोई भूल भटके से भी, जान में अनजान में भी, यदि एकादशी के दिन अपनी बहू से, अपनी लड़की स्त्री से झगड़ा करके भी यदि नहीं खाया उस दिन, होता है ना, आदमी किस लिए नहीं खाता, कभी कभी झगड़ा हो गया है बहू में, और पति और पत्नी में, बीबी और मियाँ में हो गया झगड़ा, तो झगड़ा हो गया, कहे मैं नहीं खाऊंगी। यदि ये भूल से भी यदि किसी ने उस दिन नहीं खाया, इसका महान फल होता है, रोगों से भी बचता है, शरीर को विश्राम भी मिल जाता है, और भगवान ही एकादशी होकर के आए उस दिन, उस दिन के उन्होंने एक दे रखा है कॉन्सेशन, बहुत बड़ा भारी कॉन्सेशन, लोग तो हमको याद करते नहीं। यदि उस दिन में बिना जाने सुने हुए भी यदि भोजन नहीं किया, चावल गेहूं रोटी मकई इत्यादि का ये सब भोजन नहीं किया, और रात में यदि नींद नहीं आई झगड़े के कारण या किसी भी कारण से, तो और भी अच्छा हो गया, रात्रि का जागरण हो गया ना? और हुआ क्या, उसे भगवान की स्पेशल मर्सी उस पर बरसती है, स्पेशल, और उसके द्वारा भगवान को जानने का उसको मौका हो जाता है। संतों का संग भगवान मिला देते हैं, और धीरे 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 आत्मा को रियलाइज करके, भगवान को भी जान करके, भगवान के उस धाम में पहुंचता है जहां से फिर लौटना नहीं होता। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, उस कृष्ण के गोलोक बैकुंठ से भी ऊपर ब्रज धाम को प्राप्त करता है, जहां पर भी ब्रह्मा का जाना बड़ा भारी मुश्किल है। शंकर जी गए हैं तो कैसे गए, गोपीश्वर महादेव बन करके गए, ऐसे धाम में अनायासी एकादशी भक्ति की जननी है। जैसे हमारी मैया हमारी जननी है, अपने कोख में धारण करती है, उसी प्रकार से ये एकादशी भक्ति देवी को जन्म देने वाली है। सहज है, किंतु एक कृष्ण ने कॉन्सेशन दिया है, एक दिन के लिए 15 दिन में, इसको आप लोग भूलेंगे मत। भगवान के चरणों में प्रेम होता है, और ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं भगवान कि जरूर अपने भक्तों को किसी न किसी माध्यम से जरूर मिला देंगे, यदि एक बार भी एकादशी कर लिया, और एकादशी का फल इतना अनंत है जिसको भी भगवान भी वर्णन करने में समर्थ है। मथुरा की एक सत्य घटना में, प्रत्यक्ष घटना मैंने अनुभव की। एक गाय थी बड़ी बीमार, उसका पेट फूल गया, रास्ते में पड़ी हुई, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, गाय बड़ी सुंदर देखने में किंतु अब मर रही, छटपट छटपट कर रही है, आदमी देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। उस अवस्था में एक मथुरा की जो रोज हमसे प्रवचन सुनने आती, उसने कहा महाराज जी बड़ी दया आती है, एक गाय बड़ी सुंदर पड़ी हुई है, पेट फूला हुआ है, और वो बोल भी नहीं पाती है, और आँख से आंसू गिरते। मैंने कहा जी जाओ बेटी, जा करके गैया के कान में कहना कि मैंने बहुत सी शुद्ध एकादशी की है निर्जला, उसका फल आपको मैं देती हैं गैया माता, एक एकादशी का केवल फल मैं आपको अर्पण करती हूँ और उसके बाद में देखना जे क्या होता है। तो गई और गैया के कान में बैठ करके उसको गंगा जल या यमुना जल वहाँ रहता है ले आ करके उनको तुलसी दे दिया उसके मुख में और कहा जी गैया गो माता आपके कान में मैं आपको अपनी एकादशी निर्जला हमने बहुत सीखी हैं उसका एक एकादशी का फल आपको दे दी। कहने के साथ में गैया ने एकदम उसको होश हो गया उसके तरफ में देखा और देख करके एक मिनट के अंदर में श्वास छोड़ दिया और उसी दिन भी एकादशी भी थी सहज रूप में चली गई। ये तो हमने लौकिक कहा अब चले हैं हम परमार्थ में। एक राजा थे उनका नाम था अम्बरीश महाराज भागवत में पढ़े हैं ना अम्बरीश महाराज की कथा। वो भगवान के भक्त थे एकादशी का निर्जला उपवास करते थे। कैसे करते थे एकादशी के पहले दिन एक बार खाते थे सवेरे फिर शाम को रात में नहीं और एकादशी के दिन एकदम पानी भी नहीं लेते। दूसरे दिन सवेरे सूर्य के उठने पर ठाकुर जी की पूजा कर ठाकुर जी का प्रसाद कुछ वो ग्रहण करते थे। रात में सोते नहीं थे नाम करते थे हरे कृष्ण जपते रहते थे। मथुरा में रहते थे एक समय में दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे। दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष हैं जोगी हैं। वो यदि किसी को कह दें जे तुम मर जाएगा तू पेड़ हो जाएगा तेरे घर में आग लग जाए तो आग लग जाएगी ऐसे ऐसे कर देंगे तो सिर से आपकी ज्वाला निकलने लपटे निकलने लग जाएगी जिसको जो कहते हैं वही हो जाता है। तो वो आए उनको देख करके उस दिन द्वादशी का पारण था। पारण किसको कहते हैं एकादशी को करने के बाद में व्रत। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद में ठाकुर जी को कुछ दे करके कुछ जरूर अन्न जातीय कुछ लेना है नहीं तो व्रत नष्ट हो जाता है। उस दिन एक घड़ी केवल की आध घड़ी द्वादशी थी इसके बाद में उसी के अंदर में पारण करना कुछ खा लेना है ठाकुर जी को भोग दे करके। वो तैयारी में थे अब मुश्किल से 20-25 मिनट का समय रह गया था। यदि उसके अंदर में कुछ नहीं खाते हैं ठाकुर जी का प्रसाद तो व्रत नष्ट हो जाएगा उनको भगवान की कृपा से वंचित रहना पड़ेगा इसलिए वो तैयारी में थे। इधर में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी से को देख करके बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले और सिद्ध महात्मा जी आ गए आज हम पहले आपको खिला करके तब द्वादशी का हम पारण करेंगे। ये ठीक है तो हमको खिलाएगा तो हम तो आपको खिलाएंगे आप हमारे घर में प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा जैसे बेटा मैंने अभी तो स्नान नहीं किया आज काम में ऐसे लग गया स्नान नहीं किया मैं अभी यमुना पासी हैं यमुना में स्नान करके आ रहा हूँ तब तक तुम तैयारी करके रखो। ठीक और चले गए जल में खड़े रह गए और उनको याद ही नहीं रिया जान पूछ करके समय बिता दिया। अब केवल एक मिनट का समय रह गया यदि उसमें कुछ ठाकुर जी का प्रसाद नहीं ले लेते हैं तो व्रत नष्ट हो जाएगा। एकादशी करने का जो फल है भगवान के चरणों में प्रेम ये नहीं होगा। अब क्या किया जाए देखा जो तो ऋषि आ ही नहीं रहे और एक मिनट के अंदर में तो आएंगे नहीं अब क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर बड़े बड़े शास्त्र जानने वाले बड़े बड़े ब्राह्मण लोग भक्त लोग सब वहाँ पर थे उन लोगों से पूछा क्या किया जाए। उन्होंने कहा भाई अतिथि तो साधारण आदमी नहीं है बहुत बड़ा ऊंचा अतिथि है यदि आप उसके आने के निमंत्रण दे करके और पहले ही कुछ खा लेते हैं तो आपको श्राप अभिसंपात दे देगा कॉर्स कर देगा और आप मारे जाएंगे आपके घर वाले सभी मरेंगे और यदि एकादशी का पारण नहीं करते हैं समय पर तो आपको व्रत का नष्ट समय वो जो फल है वो नष्ट होगा। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो मैं अपना परमार्थ नष्ट नहीं करना चाहता भले ही मर जाना पसंद कर है मुझे किंतु एकादशी का फल जो भगवान की भक्ति है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। हम तो भगवान के चरणों में प्रेम चाहते हैं उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए हम एकादशी का पारण जरूर हमको करना है किसी भी हालत से। जो आदमी पूर्ण उपवास होता है, यदि पानी भी नहीं लेता है, तो ठाकुर जी का चरणामृत जिसमें तुलसी दी जाती है, उस चरणामृत को बिना तुलसी के भी चरणामृत यदि ले लिया जाए तो उसका पालन हो जाता है। किंतु जो लोग फल मूल खाते हैं और पानी और शरबत पीते हैं, उन लोगों के लिए नहीं। उन लोगों के लिए अन्न जाति या कुछ भगवान का प्रसाद जरूर लेना होगा। आ रहा है समझ में? जैसे हमने निर्जला किया, एकदम निर्जला, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पालन कैसे होगा? ले सकते हैं। किंतु यदि हमने कुछ फल लिया है, शरबत लिया है, दूध दही लिया है, तो हम पानी पीने से भी चरणामृत जो है हमारा पालन हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ठाकुर जी का चरणामृत जो अन्न भी नहीं है और हमने निर्जला किया है, इसलिए हम ठाकुर जी का चरणामृत हम ले लेते हैं। बस उन्होंने चरणामृत एक बूंद लिया, बस व्रत की रक्षा के लिए, हमारी एकादशी का फल प्रेम नष्ट न हो। और उनके लेते ही योगी महाराज जी दुर्वासा जी पहुंचे। अरे बदमाश, धर्म का ढकोसला, वो क्या कहते हैं, धर्म ढोंगी, ढोंगी तो व्रत करता है, ब्राह्मणों को निमंत्रण करके हमारे जैसे योगी को तुम नहीं जानता है जी क्या फल होता है, तुमने खा लिया? वो हाथ जोड़ करके खड़े थे, कुछ हाँ नहीं बोल रहे थे। तू बोलता भी नहीं है, इसके लिए क्षमा भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं तुमने किया, जाओ। बस अपना एक केस का वो जटा थी ऐसे उखाड़, और उखाड़ते भयंकर आग हो गई और उन्होंने उनके तरफ में छोड़ दिया। वो राक्षसी एकदम ज्वलंत अंगार बन गई और उनके तरफ में दौड़ी उनको जला देने के लिए, और वो चुपचाप खड़े हैं, प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम। उनको मरने का फिक्र नहीं और रहने का भी चिंता नहीं, क्यों? वो भगवत भक्त हैं, वो जानते हैं कि आत्मा मर नहीं सकती है आग से या किसी चीज़ से, और आज न कल तो जाना ही है, तो इसके लिए क्या बात है, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, हम भगवान के लिए किया था। उन्होंने कहा तुम हमारी अवज्ञा की हमको बुला करके, और तुम पहले ही खा लिया। जब राक्षसी उनके तरफ में दौड़ी, इतने में भगवान का चक्र सुदर्शन भक्तों की रक्षा के लिए घूमता रह गया, आकर के पहले कृत्या राक्षसी को जला करके खत्म कर दिया, और वो मुड़ करके दुर्वासा की तरफ में चला। अब दुर्वासा जी, अब देखिए कितने बड़े योगी, आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मयोगी हैं, और उस चक्र सुदर्शन के डर के मारे भागे और ये उसने पीछा किया। त्रिलोकी में कहीं भी स्थान नहीं, जहाँ जहाँ जाए पीछे पीछे लगा रहा, अब मरे, अब छुआ, अब जलाया, किंतु जला नहीं रहे थे, कुछ कारण था। त्रिलोकी घूमाए, ब्रह्मा के पास में गए, शंकर जी के पास में गए, कहा जी हम नहीं कुछ कर सकते, ये तो प्रभु का चक्र सुदर्शन है, यदि हम कहेंगे तो हमको भी मारेगा, ये हमको भी जला करके खत्म कर देगा। जाओ भैया, जिसका चक्र सुदर्शन है उसी के पास में जाओ। नारायण के पास में, विष्णु के पास में गए, भगवान के पास में, भगवान से प्रभु आपका सुदर्शन चक्र पीछा करता हुआ आ रहा है, आप जल्दी से हमें बचाइए, इनको मरने का भय है, किंतु उस भक्त को, उसको कोई भय नहीं। भक्त ऐसे ही होते हैं, उनका किसी को भय नहीं, निर्भय होकर के भजन करते हैं, भगवान के चरणों में शरणागत हैं, इसलिए मृत्यु आए चाहे जो कुछ भी हो वो नहीं डरते। और दुर्वासा जी इतने सिद्ध योगी, वे मृत्यु के पीछे भगे 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 किसी प्रकार से। नारायण बोले जी मैं कुछ नहीं करता, यदि किसी के पैर में कांटा गड़ गया तो वो सिर से नहीं निकलता, आ रहा है समझ में? पैर में कांटा गिरा गड़ गया ऐसे तो कहाँ से निकलेगा? पैर से ही निकलेगा। हमारा पैर है, हमारा भक्त है, हमारा हृदय है, तो जहाँ गड़ा है वहीं से निकलेगा। तुम जाओ फिर उन्हीं के पास में, अम्बरीश के पास में जाओ, वही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अपने को बेच दिया है भक्तों के हाथ में, मैं कुछ स्वतंत्र थोड़े हूँ, हम तो भक्त के पराधीन हैं, वो जैसे नचाता है मैं वैसे नाचता हूँ। अर्जुन ने कहा जा रथ पर बैठ जाओ, तो मैं उनके रथ पर बैठ गया, कोई कहा जा हमारे हृदय में बैठ जाइए तो मैं बैठ जाए, बिना उनके आदेश से मैं कुछ नहीं करता, मैं जो कुछ करता हूँ भक्तों के लिए ही करता हूँ, मैंने अपने को बेच दिया, भाई जाओ वहीं। फिर कुछ नहीं आया समझ में, फिर लौट करके गए, जब उनके चरणों में गिरना लौटे तो उन्होंने पकड़ लिया आलिंगन करके, महात्मा जी आपको बहुत मैंने कष्ट दिया, आप मुझे क्षमा करें। अरे तुम, तुम्हारी महिमा आज हमने देखी, भगवत भक्तों की महिमा, भगवान के दासों की महिमा अद्भुत है। मैं पहले नहीं जानता था जो भक्तों की महिमा इतनी है। मैं समझता मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं सिद्ध योगी हूँ, मैं विश्व में सर्वत्र भ्रमण कर सकता हूँ मन के वेग से भी अधिक, किंतु आपकी इतनी महिमा आज नारायण के मुख से हमने सुनी, शंकर जी के मुख से और ब्रह्मा जी के मुख से सुनी। उसको त्रिलोकी में कोई भी दंड देने वाला नहीं है भगवान के प्रभु को। एक बार भगवान का नाम यदि ले लिया कोई भूल से भी, जमदूत उसके पास नहीं आएगा, उसकी सारी व्यवस्था प्रभु के अंदर में होती है, उसके लिए बैकुंठ से विमान आते हैं। यदि एक बार भगवान का नाम लेकर के प्रणाम कर दिया, सिर झुका दिया, खबरदार जम के दूत वहां मत जाना। भूल करके भी अपना नाम यदि भगवान का कोई भी नाम, हजारों नाम में से कोई भी एक नाम ले ले, तभी उनके पास में नहीं जाना। जिनके गले में तुलसी देखना, जिनके घर में ठाकुर जी गीता भागवत हो, उनके घर में तुम लोग मत जाना। ये तुम लोग के कंट्रोल में नहीं है, जम के कंट्रोल में नहीं है, ये किसके कंट्रोल में है? प्रभु के हाथ में है, वो जैसा करते हैं करें। इसलिए आज मैंने उनकी महिमा देखी, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं देखिए आपके लिए एक वर्ष तक उपवास होकर के ऐसे ही खड़ा हूँ, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं कहा जी एकादशी की महिमा इतनी है, मैंने पहले समझता था मैं एकादशी नहीं करता था, अब आज से मैं भी एकादशी करूँगा। हमको भी कितना हो गया, कितना वर्ष, एक वर्ष पूरा हो गया कुछ खाए हुए, मैं घूम रहा हूँ, हमारी कितनी 12 एकादशी हो गई, आज मैं उसका पारण कर रहा हूँ, 24 एकादशी। तुम्हारे घर में जो कुछ बनाए भाई लाओ, अब मैं निर्जला किया। उनके घर में जो कुछ ठाकुर जी का प्रसाद बना हुआ था, उन्होंने कहा जी पहले आप लीजिए आपका प्रसाद लूंगा। अम्बरीश ने कहा जी नहीं 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 नहीं, आप ब्राह्मण हैं, पहले आपको दूंगा। बड़े नम्र होते हैं संत लोग। अम्बरीश महाराज होने पर भी इस संत से और जोगी से भी बड़े लाख गुना ऊंचे हैं। कोई गृहस्थ भक्त भी हो, एकादशी का व्रत करता है, भगवान का नाम करता है, ठाकुर जी की पूजा करता है, बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता, वो परमात्मा है। साधारण लोग इस चीज को नहीं समझ। कोई भी साधु ब्राह्मण उसको प्रणाम तो करेंगे, किंतु उसका भी प्रणाम में वो है, कृष्ण की मैया यशोदा जी है ना। यदि वहां पर कोई भी ब्राह्मण पहुंच जाएगा तो अपने तो प्रणाम करके उसकी धूली लेकर के अपने लगाएंगे, कृष्ण को भी लगाएंगे, कहा जी हमारा लाला कृष्ण, इसकी विपत्ति ना हो, मतलब पर ब्रह्म साक्षात जिसकी गोदी में आए हैं, और उनकी चरण की धूली देते हैं और वो आशीर्वाद करेगा तुम्हारा लाला ठीक रहे, कुशल से रहे, बतलाओ। इसलिए भक्तों की महिमा लोग नहीं समझते, एकादशी की बड़ी महिमा है। एक छोटा सा और सुन लीजिए, पुराणों में एक समय की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था चित्रांगद, और उनके बेटे का नाम रुक्मांगद, और उनका नाम था धर्मांगद। ये कहानियां नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये प्रत्यक्ष सत्य है। यदि मैक्स मुलर की कथाएं जो उन्होंने लिखा वो यदि ठीक है, मान्य हमारे लिए है, यदि सेंटोस्टों की जो थ्योरिया जो पुस्तकों में है वो ठीक है, हमारे पुराण उनसे लाखों वर्षों की कोटि कोटि वर्षों के सत्य इतिहास हैं। माइथोलॉजी मत समझना, ये गप केवल है, ऐसे ही है, लोगों के समझ में नहीं आता इसलिए वैसे कहते हैं। हमारे भारतवर्ष को नीचा दिखलाने के लिए ये सब कल्पनाएं कोरी की गई। ये हमारे लोग कहेंगे संस्कृत इज डेड लैंग्वेज, उसमें कुछ भी नहीं है। अरे उसी को लेकर के आज जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका सब बड़े बड़े रिसर्च करके ये विमान और क्या क्या निकाल रहे हैं। इसलिए माइथोलॉजी नहीं है, कल्पनाएं नहीं है कोरी। जवाहरलाल ने भी अपनी इंदिरा गांधी बेटी को लिखा मसूरी में, ये सब बेकार की बातें हैं, पुराणों की बातें विश्वास नहीं करनी चाहिए। एक आदमी ने पूछा जी गीता पढ़े हैं? तो हाँ, गीता में बतलाइए ये क्या है। उन्होंने मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है। कहिए आप हिंदुस्तान के होते हुए भी वहाँ के प्रधानमंत्री होकर के आपने गीता नहीं देखा, तो आपको धिक्कार है। एक अंग्रेज वहाँ जर्मन विद्वान ने कहा। तो हम लोगों को ये सब जानना चाहिए, आप लोगों को, इसलिए आप, मैंने विशेष करके आप लोगों को बुलाया। अपनी भारतीय संस्कृति को मत भूलिए, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, अपने बच्चों को भी ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग बनाएं जो हमारी उच्च, जो विश्व भर में जो उच्च संस्कृति है, जिसमें आत्मविज्ञान है, परमात्मा विज्ञान है, प्रेम का विज्ञान है, है ना, ढाई अक्षर प्रेम का, जिसके अंदर में प्रेम नहीं है और समस्त सब कुछ जानता है, बड़े बड़े एटम बम बना सकता है और प्रेम नहीं है, तो वो ये ज्ञान किस काम का, संसार को भ्रष्ट कर देगा, जला करके खत्म कर देगा। प्रेम जरूर होना चाहिए, यही प्रेम की विद्या हमारे भारतवर्ष में है, इसको समझिए। तो इसलिए धर्मांगद और रुक्मांगद, धर्मांगद पिता का नाम राजा और उनके बेटे का नाम चित्रांगद रुक्मांगद। राजा ने ऐलान किया कि देखो हमारे राज्य भर में सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएं, यदि किसी ने भूल से खा लिया तो हमारे आदमी चारों तरफ में हैं, वो खबर लगा करके मुझे बतलाएंगे, अपने देश से निकाल देंगे उनको, फांसी मैं नहीं देता, किंतु अपने देश में नहीं रहने दूंगा। कोई भी अधार्मिक व्यक्ति को, चाहे स्त्री पुरुष बाल वृद्ध कोई हो, अपने देश में हमारा कोई स्थान नहीं है। धार्मिक व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करते हैं, सच बोलते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, पति पत्नी में प्रेम से रहते हैं, स्वार्थ नहीं है, ऐसे लोग हमारे राज्य में रहें। और भगवान पर जिनका विश्वास नहीं है, एकादशी नहीं कर सकते, माता पिता का आदर नहीं करेंगे, गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे, हमारे राज्य को छोड़ करके दूसरे में चले जाएं। इसलिए एकादशी के पहले दिन उनके राज्य भर में ढिढोरा बजता था। ढिढोरा माने क्या, डुगडुगी बजा करके कहते थे जी कल एकादशी है, सावधान हो जाओ, सावधान, कल एकादशी है। इस प्रकार से सब कुछ चैतन्य करा दिया जाता था। राजा अब बूढ़ा हो गया, 50 वर्ष का, उसने अपने बेटे को राज्यपद दे दिया। 50 वर्ष के बाद में अब गृहस्थी नहीं करनी है, अब बहुत काम किया 50 वर्ष, बच्चे हो गए हैं और घर में हमारा पूरा सब कुछ है, अब बेटे मालिक होकर करें। यदि 50 वर्ष 60 वर्ष के बाद में भी, रिटायर्ड होने के बाद में घर में रहते हैं और मालिक बंद करके रहते हैं या मालकिनी, तो बहू से झगड़ा होगा, बेटे से झगड़ा जरूर होगा और अब बच्चे आपको जरूर तंग करेंगे, इसलिए खुशी से उनको सब दे दीजिए। आप लोग 50 वर्ष के हो जाने के बाद में ये चाबी अपने घर की है, अपनी बहू को दे देना, और ये बाप लोग क्या करेंगे अपने बेटे को, जबकि वो 24-25 वर्ष का हो जाता है और आप हो जाते हैं 60 वर्ष का, भाई खुशी से उसको दे दीजिए, तब तो आपका आदर होता रहेगा घर में, और नहीं तो आदर नहीं होगा, ये समझ रखिए, वो घर बेकार का हो जाएगा।
और पहले मांगे तो
हाँ, आज करके कल जुगी लड़के मांग लेंगे, और भारतीय लड़के संग वो कभी भी नहीं मांगेंगे, किंतु बेटा उनको दे देता है। तो वो 50 वर्ष होने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम राज्य करो और मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ भजन करने के लिए, कोई ज़रूरत हो तो तुम हमसे आकर के कहना, हम तुमको बतला देंगे। ये कह करके वो चले गए भगवान का भजन करने, और घर में सब सारी चीज़ें, अब बेटा करता था, किंतु बेटा करता था कि जब तक हमारे पिताजी ये तो हैं राजा, वही हैं, मैं युवराज हूँ केवल, युवराज मैंने उनका काम देखना, ऑफिस संभालना केवल, मालिक हमारे पिताजी हैं। चले गए, 1-2 वर्ष या 4-5 वर्षों के बाद में, जब वो राजा वन में जो भजन कर रहे थे, चित्रांगद क्या धर्मांगद, एक बड़ी रूपसी 16 वर्ष की परम सुंदरी एक कोई राजकुमारी से उनके सामने आई, और जहाँ ये भजन कर रहे थे उसी के सामने में फूलों को लेकर के इस प्रकार से करती हुई, कभी उसके कपड़े इधर से उधर हो जाते और उनके सामने खेल रही थी, अपूर्व सुंदरी है, तो मैंने कभी ऐसी सुंदरी देखा। ये थी कौन, ये थी जमराज जी कह रहे हैं कि भाई आज कल एकादशी का व्रत करके सभी लोग तो पार हो जाते हैं, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है, जेलखाना पूरा खाली हो गया, नरक खाली हो गया, तो अब इसकी क्या जरूरत है, इसलिए प्रभु आप हमारा ये सब कुछ जो दायित्व था नौकरी आप ले लीजिए और मैं भी जंगल में जा करके भजन करूँगा एकादशी व्रत करके। उन्होंने भाई ठहरो तो थोड़ा सा, अभी थोड़े दिन तक रखो ऐसे ही, फिर जरूरत होगी तो मैं देखूंगा। ब्रह्मा जी को कहा जी देखो एक मोहिनी नाम की ऐसी सुंदरी लड़की बनाओ जिसको देख करके उसकी खूबसूरती को सभी लोग भूल जाए, और उसको कहो जो वो राजा जो वन में जंगल में गया है वो एकादशी व्रत तोड़ दे, और अपने बेटे को भी कह दीजिए एकादशी व्रत तोड़ दे, तो फिर नरक में आदमी फिर काफी गुलजार हो जाएगा, चहल पहल हो जाएगी,
जगह ही नहीं मिलेगी, सब वेटिंग लिस्ट में रहेंगे।
अब वो ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए राजा की, उन्होंने मन ही मन में एक सोचा, एक अपूर्व सुंदरी 16 वर्ष की कन्या सर्वांग सुंदर हो जाए, साथ ही साथ में हो गई, जो विश्व की सृष्टि करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा मैं क्या करूं, मुझे किस लिए बनाया, देखो तुम्हारा नाम हम बेटी मोहिनी रखते हैं, तुम्हारा ऐसा सुंदर रूप बनाया कि जगत का कोई भी आदमी देख करके मुग्ध हो जाएगा, भूल जाएगा अपने को। तो महाराज वो धर्मांगद जो वन में तपस्या कर रहे हैं उनके यहाँ जाना, उनको देख करके तुम उनके पास में चली जाना, और तुम्हें देख करके कहेंगे मैं तुम्हारे साथ में विवाह करके रहना चाहता हूँ, तुम स्वीकार करना, किंतु कहना जो मेरी बात मानेंगे आप तो करूँगा, नहीं यदि मेरी बात को नहीं मानेंगे तो मैं चली जाऊँगी। इसके बाद में तुम उनकी परीक्षा लेना एकादशी के दिन, एकादशी मत उनको करने देना। बहुत ठीक है, तो ब्रह्मा के आदेश से वो उनके पास में गई, बड़ी सुंदरी सजी हुई, केश में फूल के गुच्छे लगा रखे हैं, लंबा काजल, सुंदर तिलक, अद्भुत, और अपने कपड़ों को आधा रखा, पूरा नहीं, जैसे यहाँ के देखना है ना, कोई चादर फादर कुछ नहीं, और यहाँ तक पूरा खुला, यदि यहाँ तक खुला रहा तो कोई बात नहीं, सड़कों पर बड़े मौर से चलते हैं, तो वैसे करते हुए वो उनके समीप में चली गई, उनका ध्यान खुल गया, जो वो कुछ स्मरण कर रहे थे, देखा देख करके कहा भाई कौन है, अब उनसे रहा नहीं गया तो उसको बुलाया, तो वो आ गई, आप कौन हैं, किसकी राजकुमारी हैं, किसकी बेटी हैं, किस लिए यहाँ पर आई। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा मैं इधर से जा रही थी किसी काम से, किंतु आपको देखा जी आपके समान जगत में कोई सुंदर नहीं है, मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने देखा जी मुँह मांगे ये मिल रहा है वरदान, नहीं ये ठीक है, मैं भी अब तो आया था भजन करने के लिए तो मैं भजन पीछे कर लूँगा, बस ठीक है। वहीं पर गांधर्व विवाह हो गया, राजा ने कहा जी अब जब विवाह ही हो गया तब राज्य सुख भोगेंगे, यहाँ पर तुमको मैं खुश नहीं कर सकता, तो चलो हमारे साथ में। उसको लेकर के आ रहे थे और खबर दिया अपने बेटे को जब बेटा मैं आ रहा हूँ और हमारे साथ में हमारी नई दुल्हन भी है। अच्छा ठीक है राज, उसने सुना वो हाथी घोड़े और रथ लेकर के और अपनी मैया को भी बुलाया, देखो मैया एक बात करना, राजा आप दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है, उस लड़की को तुम अपना बड़ी बहन के समान जानना और मैं उसको अपनी मैया के समान समझूंगा, इसमें तनिक भी गलती नहीं होनी चाहिए, और उसकी सब प्रकार से सेवा करना, राजा को खुश रखना है, राजा हमारा पिता है तुम्हारा पति है। इसलिए जब गया तो बड़े ढाक ढोल से बड़े जुलूस के साथ में उसको हाथी पर लेकर के बैठा करके राजा रानी को बड़े प्रेम से नगर में लाया और जो राज्य का काम था सब राजा को समझा, राजा बड़े खुश हुए, हमारा बेटा तो बड़ा अच्छा है, और उनकी पत्नी भी दासी की भांति उनके पास में रही। इतने में रहते रहा, अब राजा मालिक होकर के अब उसके साथ में राजभवन में रहने लग गया। एकादशी का पहला दिन आया, राजा ने ढिढोरा पिटवाया, कल एकादशी है सावधान, सबको एकादशी करना है। जब वो बज रही थी और जबकि आदमी वो कह रहा था प्रतिहारी जो हमारे एक राज्य में सभी लोग धार्मिक होंगे एकादशी का व्रत करेंगे, जो नहीं करेगा उसको हम अपने राज्य से बाहर कर दूंगा, यही हमारा आदेश चारों तरफ में घोषणा की जा रही है, इसलिए कल उपवास करना है, मैं भी उपवास एकादशी का करूंगा। ये क्या भाई, हमसे आपसे शर्त है, हमारी बात माननी होगी, गरीब दुखी ब्राह्मण लोग और जो विधवाएं हैं वही के एकादशी करें। आप राजा क्षत्रिय हैं, आप यदि एकादशी मानेंगे और कुछ नहीं खाएंगे तो दुर्बल हो जाएंगे, वो शत्रु आप पर आक्रमण करके आपको जीत लेगा, फिर ये राज्य चला जाएगा। मैं खबरदार ऐसा नहीं करने दूंगी, इसलिए आपके साथ में हमारी शर्त है, हमारी बात माननी है, इसलिए आप एकादशी नहीं कर सकेंगे, और नहीं तो मैं अभी चली। राजा ने सोच विचार किया, सोच विचार करके देखे खूब गंभीरता से, अच्छी बात है, ठीक है, आप चले जाइए, मैं एकादशी नहीं छोड़ सकता, भगवान को नहीं छोड़ सकता, आपको छोड़ सकता हूँ। और वो मुख टेढ़ा करके और वहाँ से चली। इतने में वो रानी आई, पहले वाली, मुझे बहन कहाँ जा रही है, तो हमने उन्होंने बात मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं इनको छोड़ करके जा रही हूँ, अब नहीं रहूँगी। कहिए बेटी ऐसा, मेरी बहन तू ऐसा मत कर, राजा जो कहते हैं उनकी बात मान, तू एकादशी कर, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं, मैं ये खबरदार नहीं कर सकते। या तो एक शर्त है, ये कर सकते हैं, किंतु एक है, अपने बेटे का सिर यदि काट करके अपने हाथ से दे दें सोने की थाल में हमको, तब तो एकादशी करें, और नहीं तो एकादशी न करें, दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। आया समझ में ना? या तो राजा अपने बेटे की बलि दे करके, काट करके हमको थाली में ले करके दे दे, हाँ, दोनों को, माँ और बाप दोनों को मिल करके काट करके हमको दे दो, तो एकादशी करो, और नहीं तो एकादशी मत करो। ये तो बड़ा भारी, अच्छा ठीक है, ठीक है, उनको एकादशी करने दो, मैं अपने बेटे का सिर काट करके और राजा से भी कह करके दिलवा दूंगा, ठीक है, चलो घर में लौटो। घर में लौटी, राजा को उन्होंने कहा, वो पहले वाली स्त्री ने, ये हमारे बेटे का सिर मांग रही है, तब एकादशी का आप कर सकेंगे, नहीं नहीं इसको घर से निकालो, इसको मैं नहीं चाहता। रानी ने कहा कि उसे ऐसा मत करें, बेटे का सिर उसको दे दे, कोई हर्ज नहीं, बेटा फिर होगा नहीं होगा तो बेटे का कल्याण हो जाएगा, ये काशी कर रहा है, कोई चिंता मत कीजिए, भगवान पर आप भरोसा रखिए, मरना तो ही है, तो पिता का आदेश मालूम करके यदि जो बेटा मरता है वही बेटा जगत में धन्य है, और वही पिता धन्य है जो भगवान के लिए, भक्ति के लिए अपने प्राण को भी उत्सर्ग कर देता है। फिर मान गए राजा, वो बड़ी खुश होकर के, दुल्हन नई वाली भी आ गई, और राजा ने जैसे ही तलवार उठाया उसको मारने के लिए, इतने में भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उपस्थित हो गए, हाथ पकड़ लिया, तुम्हारा जीवन सार्थक है। मोहिनी उनके चरणों में गिर पड़ी, मैं परीक्षा के लिए आई थी महाराज, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं ये काशी की महिमा दिखलाने के लिए और ऐसे भक्तों की महिमा दिखलाने के लिए ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आपके पास में आई थी। नारायण ने कहा जी तो कुछ बर मांग, तो उसने बर मांगा कि एकादशी के दिन जो लोग अन्न खाएं उनके जितने भी पुण्य हैं वो सब हमको मिल जाए, और उनके जितने ही जगत के दुर्गुण हैं उनमें आ जाए, गोवध का पाप, अन्न
मातृहत्या,
पितृहत्या, हाँ ये सब जितने गंदे पाप हैं वो उनमें आ जाए, और हमें उनके गुण आ जाए, एव मस्तु। इसलिए एकादशी के दिन में जो अन्न इत्यादि खाते हैं उनमें कुछ दुर्गुण आ जाते हैं, ये झूठी कल्पनाएं नहीं है, झूठी कल्पना है। आप दो दिन एकादशी करके देखिए, आपका चित्त पवित्र हो जाएगा, निश्चित पवित्र हो जाएगा। और फिर भगवान ने कहा आज एकादशी के दिन में जो कोई हमारे भक्त होंगे, एकादशी के दिन में यदि निर्जला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, फल मूल कंद इत्यादि लेकर के, और उस दिन हमारा थोड़ा सा भी नाम संकीर्तन करेंगे, कैसा नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे नहीं आता है, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम नारायण, कोई भी नाम आपको जो प्रिय है आप कर सकते हैं, कोई भी हानि नहीं, कोई भी नाम आपका प्रिय हो, किंतु सब नामों से श्रेष्ठ कृष्ण का नाम, क्योंकि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु एक कृष्ण का नाम लेने से उसमें राम का नाम, नृसिंह भगवान का नाम, नारायण का नाम, जितना भगवान का नाम है सब उसमें आ जाता है। जैसे 100 कहने से, हमारे 100 रुपये की नोट है तो उसमें उसका कोई भी फ्रैक्शन, 1 रुपया, 98, 54, 52, 51 और इधर में 99 रुपये तक उसके अंदर में है, सब उसमें है। उसी तरह से कृष्ण परिपूर्ण भगवान, परिपूर्ण ब्रह्म है, उनका नाम करने से, उनका व्रत एकादशी करने से सब कुछ हो जाएगा, सबका नाम लेना हो गया, यहाँ तक कि देवता देवी जितने हैं सबका नाम लेना हो गया, कोई कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्णम मदह पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उज्जते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम, वो पूर्ण है। इसलिए आप लोग सब काम कीजिए, घर में रहिए, घर गृहस्थी कीजिए, काम कीजिए, ऑफिस में जाइए, अपना बिजनेस कीजिए, सब कुछ कीजिए, भगवान को मत भूलिए, कृष्ण को मत भूलिए। और सर्वोत्तम होगा यदि एकादशी का व्रत भी कर लिया। आप दुर्बल नहीं होंगे, देख लीजिए, गारंटी है, दुर्बल है तो मैं इसके लिए दायी मैं रहूँगा। हमसे पूछेंगे आप एकादशी करके दूसरे दिन, और देखिए जिसे आपको बल अधिक मालूम होता है या दुर्बल मालूम होता है, यदि दुर्बल है तो हमारे पास में मेरी गारंटी, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हो नहीं सकता है, सूरज पश्चिम में उग जाए, भले ही उग जाए, भले ही आग से बर्फ पैदा हो जाए, आकाश में फूल खिल जाए, भले ही कछुए के पीठ पर केस उग जाए, भले ही खरगोश को सिंह आ जाए, यह सब हो सकता है। बारी मथे बरु हो य घृत शिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ है। ये सब भले ही हो जाए, भले ही पानी को बिलोने से, मथने से घी निकल जाए, भले ही निकल सकता है, किंतु भगवान का जो भजन करेगा, एकादशी इत्यादि का जो व्रत करेगा, उसका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, यथेष्टम रे भ्रात गुरु हरि हरि धाम। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं हाथ उठा करके ऐसा, भाइयों सुनो, यहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई, भाइयों सुनो, नवद्वीप के बाजार में खड़े होकर, भाइयों सुनो, तुम लोग हरि हरि एक बार कह दो, यही तुमसे हम भिक्षा मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते हैं। और हरि हरि यदि तुमने कहा तो जन्म मृत्यु को जरूर पार करके भगवान के लिए परम सुख में तुम्हारा जीवन जाएगा। यदि ऐसा ना हो तो इसके लिए मैं गारंटी हूँ, मैं उत्तरदायित्व हूँ, कर करके देखो। इसलिए आप लोग भी यदि सुखी रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, सीधे सरल रूप में बिना पैसे का हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, आप जो कुछ करते हैं करते रहें, कोई बात नहीं, किंतु इसको जरूर करेंगे। और आप चाहे सोम मंगल शुक्र शनि आप ये करते हैं, चाहे लड़ाई स्त्री से पुरुष से झगड़ा करके उपवास करते हैं, चाहे करे चाहे न करे, एकादशी का थोड़ा सा व्रत कर लें, उस दिन ना हो तो झगड़ा कर लेंगे कोई बात नहीं, किंतु करना जरूर है। जय राधा माधव। जब कहेंगे तो क्या गड़बड़ कर देता है। कनाडा गया था वैंकूवर, वहाँ पर एक हमारे भारत के रहने वाले हमसे मिले, पंजाब में रहते थे, वो मुझसे मिले। वो रोने लगे मुझे देख करके, हमारी कथाओं को सुन करके रोने लगे। मैंने कहा जी आप रोते क्यों हैं? उन्होंने कहा मैं बहुत उच्च परिवार में रहता था, वहाँ मैं इंजीनियर था, किंतु अधिक रुपया कमाने के लिए मैं भारत को छोड़ करके लुधियाना का रहने वाले और मैं चला आया कनाडा में, और यहाँ पर हमने करोड़ों डॉलर्स कमाए। मैं मेरी स्थिति बहुत उन्नत, हमको एक बेटा और बेटी है, हमारे पास में 10-20 कारें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, और उसकी सारी व्यवस्था मैं देखता हूँ। लड़की भी 24 वर्ष की हो गई है, लड़का भी 20 वर्ष का है, किंतु मैं बहुत दुखी हूँ, संसार में सबसे बड़ा दुखी हूँ। मैंने क्यों दुखी हैं? आपके पास में पैसे हैं, बहुत पैसा, सब चीज़ें संसार में आपको सुख भोग करने के लिए तो काफ़ी सभी हैं, दुखी किस लिए? दुखी कि मैं क्या बतलाऊँ, अभी एक महीने की बात हमारी लड़की एक गर्ल बॉयफ्रेंड के साथ में हमारे घर में आई। मैं तो जानता भी नहीं था, इधर में आकर के सुना जब गर्लफ्रेंड किसको कहते हैं, बॉयफ्रेंड किसको कहते हैं, हमारे भारत वर्ष में ये सब नहीं, अब शायद मैं आमदनी हो गई हो इन देशों से। तो वो बॉयफ्रेंड को लेकर के आई और हाथ में बहुत बेशकीमती बियर पीने का और गंदी चीजें खाने के लिए। और आकर के अनाप शनाप हम लोगों के सामने में ऐसी गंदी हरकत करने लगी उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, हमको और हमारे परिवार को बड़ी लज्जा आई, सिर नीचा कर दिया। कहा जी बेटी घर में ऐसा करती है तू, हमारे पिता माता के सामने नंगी होकर के क्या क्या तू कर रही है तमाशा। साथ ही साथ में कहना था कि वो बॉयफ्रेंड गर्ल दोनों ये पिस्तौल निकाल कर आज अभी शूट कर देंगे यदि कुछ बोला है, ये घर मेरा है और हमारा। मैं चुप हो गया, कुछ नहीं कर सका। मैंने सोचा जी क्या इसीलिए भारत से मैं यहाँ आया, यही हमारी कमाई और संपत्ति है? मैं तब से इतना बड़ा दुखी हूँ कि आज विश्व में हमसे कोई भी बड़ा दुखी नहीं है। मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता। आप लोग इसकी शिक्षा लेंगे, आप लोग अपना कभी कभी मिलन परस्पर में एक जगह मिलित होंगे, आपके परिवार में ऐसी बातें नहीं आए, भारत की संस्कृति, भारत का यह आत्मज्ञान, ये गौरव आप लोग अक्षुण्ण रखेंगे, सर्वदा वर्तमान रखेंगे, वो कैसे होगा? कभी कभी सब लोग एक अपनी सभा सोसाइटी बनाएंगे, उसमें सभी लोग मिले, उसमें फादर ट्रेनिंग मदर ट्रेनिंग इत्यादि होनी चाहिए। स्कूल की शिक्षाएं पर्याप्त नहीं है, यदि माता पिता ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उनके बेटी बेटियां भी वैसे ही करेंगे। इसलिए अपने माता पिता का लोग आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, इन सब संस्कृतियों की रक्षा करें, तब तो हमारा समाज आप लोग यहाँ भी सुखी रहेंगे, नहीं तो समाज का सर्वस्व ही लूट जाएगा तो फिर रहा क्या, रहा क्या? इस चीज़ों को विचार करेंगे, ये सब संदेश देने के लिए आए हैं, वहाँ से ये पूड़िया बांध करके लाए हैं, ये आप लोग इस पर विचार करेंगे, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपने बहुएं बेटे लड़कों आप लोगों के समान हो और हमारी संस्कृति भी कायम रहे, हम धर्म पथ पर रहें, गाय का मांस और ये सब चीज़ें मत खाएंगे, ये शराब तराब से बचे रहेंगे, धन का उपयोग अच्छे कामों में लगाएंगे, बुरे कामों में नहीं। कमाना सहज है, उपका उपयोग करना बड़ा भारी कठिन है। एक टट्टी कमाने वाला भी वो रुपया कमा सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं, किंतु उसको कैसे खर्च किया जाए जो हमारा जीवन में वो उसको हम सुखी हो सकें, ये बड़ी भारी गड़बड़ चीज़ है। इन चीज़ों को आप लोग सब समझेंगे सुनेंगे। हमारे यहाँ इनके घर पर, हमारे मधवानंद जी के घर पर रविवार को या शनिवार को क्लास होता है इस सब चीज़ का। हमारे विष्णु जी हैं और लोग सब हैं, वहाँ पर आप लोग जाएंगे, ये सब चीज़ें जो मैं बतला रहा हूँ संस्कृति की, आत्मा की बातें, भक्ति की बातें वहाँ पर चर्चा होती हैं। या आप लोग इनको बुलाइए कहीं निमंत्रण दे करके, छुट्टियों के दिन में इन लोगों को बुलाइए, सभी लोग सम्मिलित होकर के विचार करें कैसे इस देश में रह करके भी अपनी संस्कृति को, अपना सिर ऊंचा करते हुए, मस्तक ऊंचा करते हुए हम लोग जी सकें, रहे हमारे बेटे भी वैसे हों, लड़कियां भी वैसी हों, हमारी बहुएं ऐसी हों, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर खाना पीना ये तो सुअर कर लेती है भाई, ये अब तुमने बड़ा क्या कर लिया, क्या कर लिया, सोना तो खाएंगे नहीं, डॉलर तो खाएंगे नहीं, इसलिए इन चीज़ों के लिए हम लोग ये सब सब पुड़िया लेकर के आए हैं देने के लिए, अजर अमर पुड़िया हैं, इसका आप लोग पालन करेंगे, ये आप लोगों से हमारा विशेष निवेदन है। यदि ये एक आदमी भी इसमें से कर लिया तो हम समझेंगे हमारा आना सार्थक है। लो आरती करो।